पृष्ठ संख्या 81। अशिष्टता, विद्रोह, क्रोध, अपशब्द, जिद्दी स्वभाव, अहंकार, बेकारी, मानवीय संबंधों का टूटना बिखरना, आदमी का अकेलापन, घुटन, कुढ़न, ऊब, उससे मुक्ति पाने के दूसरे गलत अधूरे रास्ते ढूंढना, अतृप्ति, असंतोष, भटकन, सब आज की देन है। और कहा जा सकता है कि इस अर्थ में नाटक यथार्थ से साक्षात्कार करता है और राकेश को जिंदगी से जुड़ा हुआ माना जा सकता है। लेकिन सवाल है कि क्या आज के मनुष्य के खंडित व्यक्तित्व को, मानसिकता को, समकालीन संतरास को वे पूरी सच्चाई और सफाई से प्रस्तुत कर सके हैं? कहना न होगा कि यही इस नाटक की दुर्बलता है। यहाँ नेमी चंद जैन की कही हुई बात को दोहराना ही काफी होगा कि यह नाटक केवल दो व्यक्तियों के बीच गलतफहमी और झगड़े को या अधिक से अधिक उनकी टकराहट की अनिवार्यता को ही पेश कर पाता है। उसे किसी बुनियादी इंसानी संकट, पारस्परिक संप्रेषण के असंभव होने की स्थिति अथवा किसी अन्य व्यापक कारण के साथ नहीं जोड़ पाता। दो इंसानों या स्त्री पुरुष मात्र के बीच उठने वाले सवालों की तह तक नहीं पहुंचता। उसमें न संबंधों की सार्विकता स्थापित होती है, न किसी मानवीय स्थिति की अनिवार्यता ही उभरती है। नाटक का पूरा अनुभव क्षेत्र बहुत ही छोटा, संकुचित और विशेष व्यक्तियों में सीमित है। इस तरह की तमाम प्रतिक्रियाओं का मुख्य कारण राकेश की चरित्र परिकल्पना है, वह भी महेंद्र और सावित्री। यद्यपि सभी पात्र कुंठाओं और अतृप्ति से अभिशप्त हैं और अपने पारिवारिक संबंधों से आशंकित और चिढ़े हुए से हैं, लेकिन नाटक का केंद्रीय पात्र सावित्री है, जो अपने जीवन में, घर में, दूसरे सब में संपूर्णता देखना चाहती है। पूरे नाटक की, घर की बागडोर उसी के हाथ में है, घर उसी के शासन से बंधा है। अव्यवस्थित घर को वही व्यवस्थित करे तो करे। बच्चों की हर समस्या से वही सामना करती है, चाहे वह विवाहित लड़की के बार बार भाग आने की समस्या हो, चाहे किन्नी की स्थूल से लेकर यौन किस्मों की समस्या हो, चाहे अशोक की नौकरी की और चाहे पुरुष बेकार पति के साथ घर चलाने की समस्या हो। पुरुष को जैसे किसी प्रश्न से मतलब नहीं, अगर उसका विरोध कहीं दिखता है तो सिर्फ सावित्री को लेकर। ऐसा इसीलिए नहीं है कि राकेश ने स्त्री पात्र को प्रधानता दी है या महेंद्र दब्बू है, बल्कि मुख्य कारण शायद आर्थिक व्यवस्था है जो स्त्री के हाथ में है। आर्थिक समस्या मानव जीवन का बहुत बड़ा पक्ष है, उससे जूझने वाला, उसे सुलझाने वाला व्यक्ति ही प्रमुख हो जाएगा। इसीलिए एक ओर स्त्री के हाथ में ही आर्थिक व्यवस्था होने के कारण ऐसा है, दूसरी ओर स्त्री के तेज और अपेक्षाकृत अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण होने के कारण भी। वही जैसे सूत्राधार है, लेकिन स्थिति उल्टी है। यहाँ वह नाचती है, सबके लिए मरती है, थकती है, लेकिन सब कठपुतले नहीं हैं जो उसके अनुसार चले। बिन्नी उसी के प्रेमी मनोज के साथ भाग गई, किन्नी पर उसका कोई वश नहीं। अशोक उसके सारे प्रयत्नों पर पानी फेर देता है, उसे अपमानित भी करता है। संदर्भ 1, नटरंग 21, पृष्ठ संख्या 38। पृष्ठ संख्या 82। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कुछ बातें स्पष्ट नहीं हो पाती, जैसे कि वह महेंद्र से क्यों असंतुष्ट अतृप्त है। क्या केवल इसीलिए कि वह अधूरा आदमी है, पर निर्भर है, या इसीलिए कि वह उसे अपने अनुसार नहीं चला पाती और अपने को उसके अनुसार नहीं चला पाती। अंत में वह स्पष्ट कहती है कि दोस्तों के हाथ में खिलौना बना महेंद्र उसे दूसरों के खाली भरने की चीज लगता है। दोस्तों को जैसे महेंद्र का घर बार, पत्नी सब रास नहीं आया, उन्हीं के अनुकूल बने रहने की कोशिश में महेंद्र घर के अंदर रात दिन छटपटाता है और दरिंदा बन जाता है। पता नहीं कब किसे नोच लेगा, किसे फाड़ खाएगा और सावित्री को पीट कर कहेगा कि बोल चलेगी उस तरह की नहीं जैसे मैं चाहता हूँ। बिना हाड़ मांस के पुतले जैसे इस आदमी से उसे चिढ़ होती जाती है, लेकिन सारी कटुता के साथ 22 साल जिंदगी काटती है उसके साथ। ये बातें स्त्री पुरुष के बदलते संबंधों का संकेत तो कर देती हैं, लेकिन कोई गहरा अनुभव, सही साफ बात पूरा सत्य या तनाव के विश्वसनीय कारण सामने नहीं लाती। साथ ही संपूर्णता की तलाश का गंभीर रूप नहीं आ पाता, जबकि मुख्य लक्ष्य राकेश का यही है। नाटक के आरंभ में अव्यवस्था से जूझता हुआ उसका चिड़चिड़ा व्यक्तित्व संपूर्ण की खोज के आगे टूटता पराजित व्यक्तित्व प्रभावित करता है। राकेश ने सावित्री के प्रति सहानुभूति भी पैदा करानी चाहिए है, स्थितियों से भी और संवादों से भी। माँ के द्वंद्व को समझने वाली बिन्नी कहती है, एक तुम ही करने वाले हो सब कुछ इस घर में। अगर तुम ही तुम सब कुछ सहकर भी रात दिन अपने को इस घर के लिए हलाक करती रही हो, और सावित्री टूटती हुई नजर आती है कि अब मुझसे नहीं संभलता, पर हुआ क्या है उससे। इस हताशा के बीच बीच में उसका अस्तित्व प्रकट होना चाहता है कि यहाँ पर सब लोग समझते हैं क्या है मुझे, एक मशीन जो कि सबके लिए आटा पीस पीस कर रात को दिन और दिन को रात करती है। इसी मनह स्थिति में वह अशोक की नौकरी के सिलसिले में सिंघानिया से अपने घर पर व्यवहारिक तौर पर बात करती है, लेकिन लड़का उसी का कार्टून बनाता रहता है कागज पर और कहता है कि बुलाती क्यों हो ऐसे लोगों को घर पर, जिनके आने से हम जितने छोटे हैं उससे भी छोटे हो जाते हैं अपनी नजर में। यह एक और प्रहार होता है उस पर। वह अपने को और अकेला पाते हुए कहती है, ऐसे में मुझसे भी नहीं निभ सकता। जब और किसी को यहाँ दर्द नहीं किसी चीज का, तो मैं अकेली ही क्यों अपने को चीतती रहूं दिन रात। मैं भी क्यों ना सुरखरू होकर बैठी रहूं अपनी जगह। उससे तो तुम में से कोई छोटा नहीं होता। एक एक करके सावित्री का द्वंद्व, उसकी बेबसी स्पष्ट होती है और चरम सीमा पर पहुंचती है, जब अशोक साफ कह देता है कि उसे अपने लिए कोई ना कोई फैसला जरूर कर लेना चाहिए। जब नहीं निभता इनसे यह सब, तो ये क्यों निभाए जाती हैं इसे। और इन्हीं क्षणों में वह अपनी जिंदगी खुद जीने का निर्णय कर लेती है। यहाँ तक तो वह सहानुभूति अर्जित करती है और उसकी आंतरिक व्यथा और संघर्ष के कारण विश्वसनीय भी लगते हैं। आगे चलकर भी अपने ढंग से जीने की प्रयत्न की शुरुआत उससे पहले का अंतर्द्वंद और असमंजस सब प्रभावित करता है।